संसार के लोगों ने इसे कहा है कि जहां न पहुंचे रवि, रवि माना सूर्य, वहां पहुंचता है कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचता है अनुभवी। आज हम सभी के बीच में अपनी इस जीवन यात्रा के बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव हम सभी के सामने रखने के लिए आए हैं आदरणीय राजू भाई जी। सिर्फ अनुभव सुनेंगे नहीं, लेकिन प्रत्येक अनुभव गाथा से जीवन में कुछ ग्रहण करने का भी हम सभी जरूर लक्ष्य रखेंगे आदरणीय राजू भाई जी। आप सभी को पहले भी कहा है और चिट्ठियां मिली हैं कुछ है, कोई को कोई भी प्रश्न है तो आप लिख करके अभी ही दे देंगे नेहा बहन को, तो क्लास के बाद प्रश्न उत्तर होंगे। राजू भाई आप सभी के प्रश्नों का उत्तर भी देंगे।
ओम शांति। आप सभी बाबा के बच्चों की विशेष आकर्षण जो आज शाम को मेरा क्लास तो है, लेकिन बीच में दादी जी नहीं आई, इसलिए आज फिर से आपसे मिलने का अवसर मिला। किस टॉपिक पर क्लास चाहिए तो सबने कहा कि अनुभव सुनाओ। सबसे अच्छी बात तो अनुभव होता है ना। क्लासेज तो बहुत सुन रहे हैं, कई तो सुनते सुनते क्लासेज कराना भी शुरू कर देते हैं। कुछ माताओं ने बहनों ने मेरे से चलते चलते कुछ प्रश्न भी पूछे थे, तो मैंने कहा कि अच्छा है कि आपके प्रश्नों का भी उत्तर देंगे। बाबा, मधुबन, मुरली और यज्ञ, हर एक इस विषय में अनुभव सुनना चाहते हैं। लौकिक जीवन का अनुभव मैं अधिक विस्तार से आपको नहीं सुनाऊंगा, फिर भी बचपन से ही बाबा ने एक छोटे से गांव से चुना। कभी कभी मैं सुनाता हूं कि अभी भी हमारे गांव में लाइट नहीं है, इतनी विज्ञान ने प्रगति की है। कल परसों गांव से फोन आया था तो मैंने कहा कि अभी कितने दिन लाइट आती है, तो बोला कभी कोई त्योहार होता है तो बल्ब जल जाता है, लाइन है लेकिन लाइट नहीं है, अभी लाइन आ गई है। तो ऐसे गांव में स्वयं मातेश्वरी जगदम्बा हम सबकी मीठी मां ने 35 दादियों को साथ लेकर के हमारे गांव में गीता पाठशाला खोली थी। पिताजी को ही गीता पाठशाला की सेवा दे दी, क्योंकि वहां जिन्होंने निमंत्रण दिया था वो नहर कैनाल के ओवरसीयर थे। नहर कैनाल गांव से निकलती है और कैनाल पर एक कोठी थी जिसमें एक बाबा का बच्चा वहां रहता था। ज्ञानी तो आत्मा कहीं से ट्रांसफर होकर के आया था, परिवार सहित तो ज्ञान में था, तो अपनी कोठी पर ही नहर कैनाल पर सेंटर शुरू किया था और उनका ट्रांसफर होने वाला था। वो तो बदलते रहते हैं एक साल दो साल में, तो ट्रांसफर हो रहा था और इतने सब लोग जो उनके क्लास में वहां आते थे उनके लिए गीता पाठशाला खोलना जरूरी था। तुम्हारे पिताजी को बहुत पक्का निश्चय हो गया और निश्चय के कारण उन्होंने संकल्प किया कि मैं अपने गांव में गीता पाठशाला चलाऊंगा। तो मातेश्वरी कानपुर उस समय गई थी और कानपुर से गांव के पास 2 किलोमीटर दूर बस जाती थी, तो उस बस में 35 दादियां एक ही बस करके आई थी। और हमारे पिताजी ने उनका स्वागत बैलगाड़ी पर बिठा करके किया था। बैलगाड़ी किया था, कई बैलगाड़ी थी, सब दादियों को बैलगाड़ी पर चढ़ाया और काफी कई किलोमीटर उनको गांव में घुमाया। तो 1960 की ये बात है और मैं उस समय गोदी का ही बच्चा था, 4 साल का ही था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं है कहानी का। वो सुनाते हैं, वो बताता हूं मैं। तो गीता पाठशाला खुल गई और जब वो ट्रांसफर होके जाने लगे तो मेरी जो बड़ी बहन है लौकिक, उनको उन्होंने अपने साथ ले लिया। वो 7 साल की थी, मैं 4 साल का था। तो उन्होंने कहा कि मैं इनको पढ़ा लूंगा और मेरे साथ रहें। तो जब उनका ट्रांसफर हुआ तो बहन तो उनके साथ चली गई और वहीं पढ़ने लगी। लेकिन मुझे मेरे एक लौकिक में पिताजी के बड़े भाई, जिनको हम ताऊ जी दादाजी कहते थे, वो 3 भाई थे, ताऊ जी हमारे लौकिक पिताजी और उनके छोटे भाई चाचा जी। चाचा जी को ज्ञान मिल गया, वो छोटी उम्र में बाबा के बच्चे बन गए, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। और ताऊ जी बहुत भक्ति पूजा पाठ तंत्र मंत्र की विद्या सीख गए थे, तो इसलिए वो भी कुमार ही थे, उन्होंने भी शादी नहीं की। हम परिवार में पिताजी के 2 बेटे, बेटी चली गई सेंटर पर और मुझे कोई ऐसी बीमारी आई तो ताऊ जी थोड़ा झाड़ फूक करने वाले, उस समय गांव में तो यही होता, तो उन्होंने कहा अगर ये बेटा मेरे को दे दो तो मैं इसको बचा लूंगा। तो पिताजी ने कहा भले तुम संभालो, उसमें क्या घर की बात है। लेकिन जब ज्ञान घर में आ गया तो हमारे दादाजी, वो ताऊ जी जो थे, वो बिल्कुल ज्ञान के एंटी थे। उन्होंने पिताजी को घर से निकाल दिया, दुकान पर बैठने नहीं दिया, उनको भी वहां से भी हटा दिया और एकदम घर से अलग स्थान बना करके रहने लगे और मुझे भी अपने साथ रख लिया। पेपर तो ज्ञान में आते ही हैं, लेकिन पिताजी का जो निश्चय था वो बहुत अटूट, बाबा के प्रति बहुत प्यार था। जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो पिताजी मधुबन में ही थे 65 में, और घर में जो गीता पाठशाला थी उन्होंने बड़े निर्भय निश्चिंत होके चलाई, लेकिन भीगरी पाठ काफी चला गांव में घर में, क्योंकि दुकान पर बैठना बंद हो गया और मस्ती ज्ञान की थी, इसलिए नौकरी जो थी नौकरी पर भी जाना बंद किया था, इधर उधर टाइम चला जाता था, तो नौकरी से भी लोगों ने निकाल दिया। केवल एक छोटी खेती थी, उसी खेती पर घर चलता था। लेकिन पिताजी हर वर्ष बाबा के घर में आने के लिए बार बार कानपुर के द्वारा आ जाते थे यहाँ। बाबा को भी निश्चय था कि ये परिवार समर्पित परिवार है, इसलिए बाबा भी बहुत प्यार से हमारी पालना अपने पत्रों से करते थे। हर पत्र में, हर सप्ताह 15 दिन में बाबा का हाथ का लिखा हुआ पत्र और उसमें पूरे नाम सहित संबोधन, पूरे एक एक बच्चे को, एक एक बाप परिवार को बाबा याद करते थे। लौकिक बहन 70 में मधुबन रहने लगी, जब वो बाबूजी गुजर गए, ट्रांसफर हुआ, उनका शरीर छूटा, तो उसके बाद वो मधुबन आ गई। और मधुबन में आने के बाद उनको मई जून की छुट्टियों में घर गई थी और मेरी भी छुट्टियां थी उस समय स्कूल की। पिताजी ने सब संबंध तोड़ दिए थे, कोई लौकिक संबंध नहीं था, मुझे पता नहीं मेरे मौसी कितनी, मेरे मामा कौन है, मेरे लौकिक में कौन घर है, मुझे कुछ पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई से संबंध ही नहीं बनाया। बाबा मिल गया, बस बाबा ही संसार है और कुछ नहीं है, इसलिए मुझे लौकिक रिश्तेदारों के विषय में कुछ भी पता नहीं। और लौकिक में भी बाबा मम्मा से मैं साकार में नहीं मिल पाया, क्योंकि दादाजी हमारे साथ बंधन था। और वो भी मुरली क्या होती है, ज्ञान क्या है, परिवार क्या है, कुछ पता नहीं है। जब बहन घर में आई तो मुझे कहने, तुमको 1 महीने की छुट्टी है स्कूल की, मैं उस समय 9th में पढ़ता था, तो चलो तुमको मैं आबू घुमा के लाती हूँ, बहुत अच्छा स्थान है और तुम अपने दादाजी से छुट्टी ले लो, आबू घूम करके आएंगे, एक महीने की बात है, फिर आ जाना। तो मैं 1971 में यही मई जून की छुट्टियों में स्कूल की यहाँ आया था, और यहाँ आया तो मुझे तो यहाँ का जादू लग गया, मधुबन का जादू प्रसिद्ध है ना। तो मधुबन में आते ही दीदी दादी, उस समय नया नया बना परिवर्तन यज्ञ में हुआ था, बाबा अव्यक्त हुए थे, और बाबा के अव्यक्त होने के बाद दीदी दादी के अंदर जो उमंग था यज्ञ को विस्तार करने का, तो वो भी सेलेक्ट कर रही थी किनको यहाँ सरेंडर कराना है, और जो ऐसी योग्य आत्माएं उनकी नजर में आ जाती थी, क्योंकि दीदी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, दीदी मनमोहिनी की बात मैं कर रहा हूं, वो एक एक को दृष्टि से ही परख लेती थी, और उन्होंने ऐसा परख लिया मुझे कि ये बालक जो है ये काम का है, यहां ही रहना चाहिए। और मेरा भी इतना प्यार मुझे मिला, इतना परिवार का स्नेह मिला, दीदियां अपने कमरों में बुला लेती थी, छोटा तो था, और जो काम होता था मेरे को कहती थी जाओ पानी ले आओ, ये करके आओ ये करके आओ, तो उनके साथ रहते थे तो टोलियां खिलाना, सौगात देना, प्यार करना, जैसे होता है लौकिक में, और बहनों को तो बहुत अच्छी विधि आती है कैसे प्यार प्रेम से सेवा कराई जाती है। तो मुझे भी बहुत प्यार मिला एक महीने में, और इतना मिल गया कि मुझे वो दुनिया जैसे अब नहीं जाना, मुझे बस अंदर से आगे मुझे नहीं जाना। तो दीदी ने कहा ये बालक तो बड़ा काम का है, लगता है यहाँ रह सकता है, आप दादी को इशारे में बोला कि इससे बात करो, इसे पूछो इसका क्या विचार है। तो दादी बड़े प्यार से मुझे इसी झूले पर, ये बगीचे में झूला पड़ा है ना बाबा का, दादी लेके आई हाथ पकड़ के बोली, एक तरफ मुझे बिठाया, दूसरी तरफ खुद बैठ गई और सब पूछने लगी। फिर कहती है तुम्हारे को बहुत मुश्किल है, तीन पिता का एक बेटा, तुमको छुट्टी मिलना मुश्किल है, लेकिन दीदी की नजर पता नहीं तुम्हारे पर गई है, दीदी का विचार तो बन रहा है कि ये यहाँ रह सकता है, सेवा कर सकता, तुम्हारा क्या विचार है? दीदी दादी अगर मुझे छुट्टी देंगी तो इससे बड़ा मेरा भाग्य और क्या होगा। तो हमने कहा दादी आप कहेंगी तो जरूर मैं सेवा करूंगा। बोली नहीं, दीदी का तो विचार है लेकिन दादी ऐसे नहीं कहती, दादी ये 15 साल की उम्र में एक तो सरेंडर नहीं कराएगी, और दूसरा तुम्हारे परिवार वालों की छुट्टी चाहिए, उनकी छुट्टी तुमको कैसे मिलेगी। हमने वो तो मेरा काम है, मैं छुट्टी ले लूंगा, आप हमको छुट्टी दे दो। तो बाबा से मिले तो बाबा ने कहा कि तुम दीदी से अकेले में मिलना, और बाबा तो जाने जाना ना रहे, उसको तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, एक ही नजर से बाबा ने परख लिया। मेरी लौकिक बहन जब बाबा को परिचय देने लगी, क्योंकि उस समय बाबा ही छोटे कमरे में आते थे अपने कमरे में, उस समय बहुत छोटा कमरा था, अभी बड़ा बनाया है इसको, एक गद्दी एक चारपाई और दीवार बस, और कुछ नहीं था वहां। तो गद्दी पर बाबा आए थे और हम और हमारी बड़ी बहन बाबा से बैठे मिल रहे थे, दो ही जने थे, तीसरा नहीं था। तो जब बहन ने बाबा को मेरा परिचय देना शुरू किया कि मेरा लौकिक भाई है, 9th में पढ़ता है, ऐसा ऐसा है, तो बाबा ने ऐसे मुस्कुराया और एकदम उसको रोक दिया, दृष्टि दी, और बाबा कहता बाबा जानता है, बहुत मुस्कुरा के बोला बाबा जानता है। तो चुप हो गई, बाबा जानता है तो मैं क्या बताऊं, और मेरा इतना निश्चय बैठ गया कि कौन कह रहा है बाबा जानता है, भगवान ही कह सकता है, मुझे क्या जानता है बाबा, मैं तो कभी मिला ही नहीं हूं। लेकिन बाबा ने इतना उसमें रहस्य था मुस्कुराने में, जो मुझे लगा कि बाबा ने मेरी जीवनी पढ़ ली, और मेरे को बहुत पक्का हो गया कि मुझे अभी बाबा की नजर पड़ गई है भगवान की, मुझे यही रहना है। तो दादी ने मुझे बहुत प्यार से समझा कर कहा कि तुम जाओ भले, लेकिन पिताजी अगर लिखित में छुट्टी देंगे माता पिता तो आना, नहीं तो नहीं आना, और मेरा विचार है अभी पढ़ने की उम्र है, तुम और पढ़ो। तो मैं जब गया तो वहां हमारी दिल ही नहीं लगे, दिल तो इधर लग गई थी, मतलब कोई अच्छा ही नहीं लगे, और मैंने कहा कि मुझे तो वहीं जाना है। दादाजी को बहुत वो था कि कैसे जाएगा, मैं भी देखूंगा, और पिताजी कहे नहीं अगर ये जाएगा तो बहुत अच्छा है, भले जाए, इसके पीछे हम सब सरेंडर हो जाएंगे। एक ही तो है और कोई तो है ही नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ रह। तो मुझे कहा अगर तुमको दादी छुट्टी देती है तो मैं अभी चिट्ठी देता हूँ और चिट्ठी ले जाओ और भले रहो मधुबन में, जब चांस मिले तो मुझे भी चांस दे देना, मैं भी आ जाऊंगा। तो मैंने एक साल पढ़ाई किया, 71-72 हाई स्कूल किया और जिस दिन पेपर हुआ उसी दिन गाड़ी पकड़ ली, चिट्ठी लिया और चला आया मधुबन में। 7 अप्रैल का दिन था, दादी यहीं मिल गई घूमते हुए चक्कर लगाते हुए मुझे। पहले पहले मेरी दृष्टि दादी पर ही पड़ी, सामने से दादी आके कहती, अरे तुम कैसे आ गया, तुमको छुट्टी मिल गई क्या, चिट्ठी लाए हो? दादी लाए हूँ चिट्ठी। अच्छा ठीक है, जाओ अच्छा फ्रेश होकर के फिर आओ दादी के पास, देखो क्या चिट्ठी में लिखा है। तो दादी ने बड़े प्यार से देखा और जगह दी, स्थान दिया रहने का। उसके बाद दीदी दादी ने बुलाया, कहा अरे तुमको तो सचमुच छुट्टी दे दिया, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकती थी। इतना लौकिक में कोई भी परिवार में न हो, माता पिता और एक बेटा, उसको भी छुट्टी मिल जाती है क्या? बहुत निश्चय है उनको। कहती कौन सा निश्चय है? बाबा कहता ना 76 में विनाश हो जाएगा, उस समय बाबा की मुरलियों में आता था 76 में बस बच्चे सब खत्म हो जाएगा 76 में। और पिताजी को इतना निश्चय था कि गांव में कहते थे अगर 76 में विनाश नहीं होगा तो हम सब छोड़ के चले जाएंगे यहां से, इतना पक्का था। तो सचमुच वो 76 में विनाश जब नहीं हुआ तो पिताजी मधुबन में आ गए, सरेंडर हो गए। और मुझे जब आया तो स्टूडेंट लाइफ थी, तो एप्लीकेशन दिया कि मुझे टाइप सीखनी है। दीदी और दादी अचानक बीमार पड़े 72 में, जब मैं आया तो दिसंबर जनवरी में दीदी दादी दोनों बॉम्बे हॉस्पिटल में चले गए। और वहां पर जब गए तो मधुबन में थोड़े लोग थे, तो उनको बहुत प्यार था दीदी दादी से। प्यार के कारण सबका नंबर लगता था मिलने के लिए, जाओ बॉम्बे। तो हर एक ग्रुप बना करके 2-3-4 ऐसे ऐसे करके सब बॉम्बे जाते थे और मिल के आते थे। लेकिन जो टाइप करने वाला भाई था उसको छुट्टी नहीं मिलती थी, क्योंकि ये जाएगा तो मुरली बंद हो जाएगी, टाइप कौन करेगा, और अकेला ही टाइप करता था। तो उसको अंदर से आया कि मैं किसी को अपने समान बनाऊं, मैं तो बंधन में बंधा हुआ हूं, और मेरे तरफ से बुद्धि में आ रहा मुझे टाइप सीखनी है। तो उसने दादी को फोन किया बॉम्बे हॉस्पिटल में, दादी सबको मधुबन से छुट्टी मिल गई आपके मिलने के लिए, मुझे यहाँ छुट्टी नहीं मिल रही है, मुरली कौन टाइप करेगा, प्रश्नोत्तर कौन निकालेगा, ये कौन करेगा, तो मैं किसी को सिखा दूं? दादी कहती किसको सिखाएगा? तो बोला एक हिंदी वाला भाई है यूपी से आया है, बहुत अच्छी हिंदी है उसकी, दिल है, मैं सिखा दूं। तो दादी ने वहां से फोन किया दीदी ने कि उसको टाइप सिखाने के पहले सिंधी सिखाना, और बिना सिंधी सीखे टाइप सीखेगा तो कोई काम में नहीं आएगा। तो मेरे आगे अभी ये प्रश्न आया कि सिंधी सीखनी पड़ेगी, कैसे सीखूं मैं? तो दादी दीदी ने ही जब वहां से आई तो कहा तुम सीख गए सिंधी? तो मैंने कहा दादी सिंधी मैं कैसे सीखूंगा? बोला अच्छा मैं बताती हूँ कैसे। तो दादा विश्व रतन यहीं रहते थे और बहुत अच्छी उनकी राइटिंग थी और बहुत एक्टिव, दादा बाबा के राइट हैंड थे, नाम ही था उनका विश्व रतन। देखा है विश्व रतन को? जिन्होंने देखा विश्व रतन दादा का हाथ उठाओ। अच्छा बहुत थोड़े हैं दादा, हमारी हंसा बहन तो बहुत पुरानी है, सबको देखा है। लेकिन दादा विश्व रतन सचमुच वो रतन थे, मुझे सब कुछ उन्होंने सिखाया। रोटी बनाना सिखाया, पहले तो रोटी बनाना कैसे सिखाया, क्योंकि यहाँ पर उस समय ये स्टीम सिस्टम, ये सिस्टम मधुबन में कुछ भी नहीं था, इलेक्ट्रिक थे ही नहीं, बहुत कम साधन थे इलेक्ट्रिक से। पानी हम लोग एक जगह गर्म करते थे, एक बॉयलर एक टंकी रखी थी, रात को पहरा देते थे, 2 बजे पानी गर्म करते थे और 3:30 बजे से उधर योग की घंटी बजती थी, योग होता था, और इधर से हम लोग बाल्टियां भर भर के सब बहनों के कमरे में गर्म पानी पहुंचाते थे। तो उस समय दीदी ने, जैसे हम लोगों को परखा तो था ही पहले से, तो दादा को कहा कि इस बालक को ट्रेंड करो हर प्रकार से, जो इसकी इच्छा हो, जो इसको संकल्प आए उसमें ट्रेंड करो। और मधुबन छोटा था, परिवार में हम सभी करीब 25-30 भाई थे और बूढ़ी बूढ़ी माताएं और भाई जो यहाँ रहते थे, बहनें रहती थी, करीब 50-60 का ग्रुप था टोटल। और छोटा सा मधुबन था, ये ओम जिसमें हम बैठे ये नहीं था, मेडिटेशन हॉल तो बाद में बना, इंद्रप्रस्थ बन रहा था, ट्रेनिंग सेंटर का ऊपर का बाबा ने बोला था वो भी बन रहा था, तैयार हुआ था, भंडारा भी पुराना छोटा सा था। मना पांडव भवन एक बहुत, अगर 200 लोग आते थे सीजन के अंदर तो हम लोग कहते थे दादी इतनी बड़ी सीजन क्यों किया है, इतने लोगों क्यों बुलाया है, क्यों क्यों ये कहते थे, क्योंकि हम सबको अपने बिस्तर छोड़ने पड़ते थे, हम नहीं कमरे में सो सकते थे, क्योंकि दादियां कहती थी मेहमान पहले, सब अपने अपने कमरे खाली कर दो, तुम लोग बरामदे में आ जाओ और इनको बिस्तर दे दो। फिर उसके बाद फिर दरी सिस्टम शुरू हुआ, जब ज्यादा संख्या 200-250 आ गए तो सब पट बना दो, अब पट बना करके 15-20 एक कमरे में सोते थे, उसके बीच में हमें भी सोना पड़ता था। तो दादियों को हम कहते दादी इतनी बड़ी सीजन नहीं करो ना, 50 लोग बुलाओ, 100 लोग बुलाओ, लेकिन 50-100 भी आ जाते थे तो छोटा हाल तो फुल हो जाता था। और उनके लिए रोटियां बनाना, उस समय रोटी कैसे बनती थी, गीली लकड़ियां, बरसात बहुत होती थी, अभी आबू में 5% उसकी भेंट में बरसात नहीं है, और इतनी बरसात में फुल गीली लकड़ियों पर रोटी जब बनाते थे तो आंखें एकदम लाल लाल हो जाती थी, हम लोगों को ही बनाना है। हर डिपार्टमेंट में धोबी घाट करना, धोबी घाट हम लोग घर में कभी गिलास से पानी भी नहीं लिया होगा, क्योंकि अकलौता बेटा तो आप समझते हो लाड़ प्यार कितना होता होगा, माँ की ममता कितनी है, कभी कोई काम घर में नहीं किया, लेकिन यहाँ आए तो धोबी घाट कपड़े धोने, धोबी जैसे धोते हैं पटके सटके लगाते हैं, यहाँ धोबी घाट था एक, अभी जहाँ बाथरूम बने ना भाई बहनों के साइड में, यहाँ पाटे थे, और पाटे और एक कमरा था जिसमें हम लोग रात को भट्टी चढ़ाते थे, सब कपड़े लेकर के सोडा साबुन मिला करके कपड़ों को गीला करके रात को चढ़ा देते थे, नीचे भट्टी में आग लगाते थे, रात भर पकता था, और सवेरे जब सटका लगाते थे ना तो इतना चमक जाते थे, तो लोग कहते थे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के साथ कपड़े पैरी से धुल के आते हैं, इतने सफाई होती है, इतने साफ स्वच्छ। तो सवेरे सवेरे यही ड्यूटी होती, उधर मुरली सुनती चलती थी, इधर हमारी धोबी घाट की मुरली होती थी, अब उधर अमृत वेला चलता था, इधर हम सबके कमरों में पानी पहुंचाते थे। लेकिन एक लगन थी, एक अंदर की इच्छा थी कि मैं कुछ सीखूं, तो दादा को ड्यूटी दी कि इसको एक सिंधी सिखाओ। तो मैं 7-8 दिन में सिंधी, सिंधी माना भाषा सिंधी नहीं, लेकिन लिखना पढ़ना जो हिंदी के ही शब्द हैं, लेकिन वो राइटिंग जो उर्दू जैसे लिखते हैं काका गागा ही, ऐसे ही हमने सिंधी पढ़ना और लिखना 7-8 दिन में सीख लिया, और सीखने के बाद साथ साथ टाइप भी सीखता गया। जब टाइप सीख गया तो सबसे बड़ी बात हमारे सामने थी दीदी की डायरी को पढ़ना। तो दीदी स्कूल नहीं पढ़ी थी, आपको पता होगा, दीदी को बाबा ने बहुत पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन दीदी थोड़े बड़े घर की आई थी, जिनको टीचर बनाया गया दीदी का, तो दीदी का दबदबा बड़ा था, डरती नहीं थी किसी से। तो दीदी ने, दीदी को पढ़ाने की कोशिश की, एक टीचर रखी थी बाबा ने यहाँ ही, तो दीदी को पढ़ाया तो दीदी ने कहा मैं नहीं ऐसी पढ़ती है, तो बाबा के पास कंप्लेन गई। दीदी को बुलाया बाबा ने कि बच्ची तुम्हारे भलाई के लिए बाबा कहता है पढ़ लो थोड़ा। दीदी कहती है बाबा ये जो है ना टीचर, ये मेरे को कहती है तुम धृतराष्ट्र लिखो, मैं अंधे का नाम क्यों लिखूं। अब धृतराष्ट्र लिखना तो दीदी को आता नहीं था, धृतराष्ट्र लिखना कोई सहज नहीं होता हिंदी में, तो कहती मेरे को कहती है तुम धृतराष्ट्र लिखो, धृतराष्ट्र अंधा, उसका नाम मेरे से लिखाती है ये, मैं नहीं लिखती। तो दीदी ने लास्ट तक भी, इतनी बड़ी प्रशासिका बनी ना, कभी भी हिंदी में साइन नहीं किया, सिंधी में ही साइन करते थे, सिंधी थोड़ा बहुत जानते थे, लेकिन क्वेश्चन आंसर इतने अच्छे मुरली के निकालती थी जो सारी क्लास को फेल करती थी। मधुबन की विशेषता अभी मैं मुरली से लेता हूं, क्योंकि मैंने मुरली कैसे सीखी दीदी से, टाइप करना, क्वेश्चन आंसर निकालना। तो ये छोटा हाल जो है ना, ये यहां पर कुर्सियां नहीं थी कोई भी, ये सोफा उफा तो थे ही नहीं, गद्दियां थी मम्मा बाबा की, और एक और तीन गद्दियां रहती थी, एक पर बच्चों को बाबा बिठाता था, एक पर मम्मा बैठती थी, एक पर बाबा बैठते, तीन गद्दी थी, अभी दो ही हैं। तो उन गद्दी पर दादी बैठ करके सवेरे मुरली सुनाती थी और दीदी नंबर वन स्टूडेंट जैसे बैठी ना, इससे भी नजदीक ऐसे बैठती थी और बैठ करके मुरली के सारे मुरली से प्रश्न बनाती थी और इतने टेढ़े मेढ़े बनाती थी जो पूरे क्लास को उस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता था। तो जब मुरली पूरी हो जाती थी तो दीदी अपना मुंह घुमा लेती थी क्लास की तरफ और कहती थी अभी मैं सभी से बैडमिंटन खेलूंगी, मेरी तरफ से बॉल आएगा, आपको कैच करना है, जवाब देना है, और जो पास हो जाएगा उसको डबल टोली मिलेगी और जो फेल हो जाएगा उसकी टोली बंद। बड़ा रमणीक क्लास होता था। और रमणीक क्लास के कौन मेंबर थे उस समय, अभी तो देखेंगे तो आप लगेगा बड़े दादा हैं वो तो सब। नंबर वन में आनंद सुर दादा बैठते थे, फिर विश्वरतन दादा बैठते थे, फिर निर्भय भाई बैठते थे, चंद्रहास दादा बैठते थे, उसके पीछे हम सब महारथी जो भी यहाँ के रहने वाले थे भाई लोग, उसके पीछे आने वाले सब। तो कायदे से नंबर वार क्लास बैठता था पूरा ही। तो दीदी एक से ऐसे प्रश्न निकाल करके पूछती थी जो सारा क्लास कहता था दीदी आज की मुरली में कहाँ थी बात, और दीदी बताती थी ये आज बाबा ने कहा है, उसी मुरली के प्रश्न और निकाल करके दीदी बहुत अच्छी तरह से क्लास को आधा घंटा रिफ्रेश करते, उसके बाद हम लोगों को छुट्टी मिलती थी। उसके बाद जब हमने सीखी तो दीदी ने कहा अगर तुमने मेरी राइटिंग पढ़ना सीख लिया तो सब सीख जाएगा, और दादियों की राइटिंग सबकी पढ़ सकता, तुमने मेरी अगर सीख लिया तो मेरे को फिर कमलमणि दादी यहाँ थी, अभी हैं, दिल्ली में रहती हैं, कृष्णानगर में। दीदी की डायरी को वही एक पढ़ती थी और कोई नहीं पढ़ता था। तो कमलमणि दादी को मैंने कहा दादी मुझे भी सिखा दो थोड़ा दीदी की राइटिंग पढ़ना। तो टाइप हम करने लगे थे तो हमारे पास बैठती थी आकर कमलमणि दादी, और बैठ करके फिर वो डायरी में हमको बताती थी दीदी ने ये क्वेश्चन लिखा, ये क्वेश्चन लिखा, ये लिखा, तो हम पढ़ते थे साथ साथ। तो दादी ने मुझे दीदी की राइटिंग और क्वेश्चन पढ़ना सिखाए और मैं सीख गया धीरे धीरे दादी की राइटिंग। तो फिर दीदी की राइटिंग सीखने के बाद दीदी ने कहा कि अभी तुम मेरी डायरी रोज ले जाया करो और कार्बन कापियां निकाल के लाया करो, क्योंकि उस समय फोटो कापी वगैरह नहीं था, तो एक टाइपराइटर एक ही था। तो जब वो भाई टाइप करता था तो मैं छुट्टी पर, वो जब होता था तो हम छुट्टी पर होते थे, तो हम जब टाइप करते थे तो तीन बार चार बार पांच बार, क्योंकि जितनी पोस्ट आती थी दीदी सब पत्रों का उत्तर खुद लिखती थी, और एक तरफ इनलैंड लेटर होता ना अंतरदेशी, उसमें एक तरफ बाबा की मुरली के प्रश्न उत्तर और दूसरी तरफ पत्रों का उत्तर, वो शॉर्ट में हाथ से लिखते थे। तो इस प्रकार से दीदी की डायरी को पढ़ना, प्रश्न उत्तर देखना, सुनना, समझना बहुत अच्छा अभ्यास हो गया। फिर धीरे धीरे ड्रामा ऐसा बना, दो साल के बाद वो भाई जो टाइप करता था उसका कुछ कारण बना और लौकिक चला गया। अब जब लौकिक चला गया तो 76 में मुझे पूरी डिपार्टमेंट मिली मुरली की, टाइप करना, मुरलियां टाइप करना, स्टेंसिल काटना, और धीरे धीरे बाबा का परिवार, उस समय पहले 50 मुरली निकलती थी, फिर 100 मुरली निकलना शुरू हुई, फिर 200 हुई, तो इस तरह से मुरली की वृद्धि होती गई। और स्टेंसिल कटते थे और साइक्लो स्टाइल हाथ वाली थी, साइक्लो स्टाइल मशीन, तो उस साइक्लो स्टाइल पर हम लोग फिर मुरली निकाल करके दो तीन भाई मिल करके पोस्टिंग करते थे यहाँ से। ये सेवा धीरे धीरे हमने ली 76 से। कंप्यूटर युग बाद में आया, कंप्यूटर युग तो बहुत बाद में आया, 80-90 के बाद आया। 90 के बाद जब आया ना तो मुझे जो कंप्यूटर मिला उस समय 1 लाख रुपए की कीमत थी, ST था ये, बिल्कुल कोई उसके अंदर मेमोरी वगैरह नहीं होती थी। और मुझे कहा गया कि तुम कंप्यूटर सीख लो, मैंने कहा मैं कंप्यूटर सीखना नहीं चाहता, मुझे नहीं आता सब, मैं तो टाइप ही करूंगा। बहुत दिन तक मैं टाइप चलाता रहा, लेकिन दादियों की इच्छा थी नहीं, दुनिया की टेक्नोलॉजी कोई अच्छी आती भले सीखो, अच्छी बात है सीख जाओगे। मैंने कहा मैं बाहर सीखने नहीं जाऊंगा, बाबा सिखाएगा तो सीख जाऊंगा। धीरे धीरे वो भी बाबा ने सिखा दिया, अभी तो सब कंप्यूटर ही चल रहा है, कहीं बाहर सीखने नहीं गया हूँ, बाबा अपने आप से, और उतना ही जानता हूँ जितना जरूरी है मेरे लिए, बाकी इंटरनेट खोलना, भेजना, पत्र व्यवहार करना वो सब कर लेता हूँ, लेकिन दुनिया की इंटरनेट की माया क्या है वो मुझे पता नहीं है, मुझे खोला नहीं आता। तो उतना ही मैं सीखा हूं जितना बाबा को काम में आ रहा है। तो इस तरह से शुरुआत के अंदर दीदी और दादी की पालना मिलती गई और यज्ञ धीरे धीरे बहुत बढ़ता गया। देख रहे हो आप 75 में यह हाल निर्माण हुआ, पहला यह हाल बना यहाँ। जब बच्चों की वृद्धि होने लगी तो कच्चे में ही बाबा आए। हमेशा जब भी उसका उद्घाटन हुआ ना तो अधूरा होता था मकान, तो बाबा को यहाँ बिठाया था इस कोने में और इतनी फास्ट मुरली चलाई बाबा ने। उस समय लिखना मुश्किल था, ड्यूटी तो मेरी लग गई थी कि तुमको लिखना है बाबा की मुरली, लेकिन बाबा की मुरली को उस समय हम लोग लिखने से बहुत फास्ट बोला बाबा ने, नॉन स्टॉप। तो हमने कहा बाबा जिस स्पीड से आप बोलते हो ना मुझे वरदान दे दो, उसी स्पीड से मैं टाइप करूं। बाबा से रूरियान होती थी, लेकिन यीशु दादी की एक प्रैक्टिस थी जो शुरू से बाबा के साथ मुरलियों को फेयर वही करते थे। साकार बाबा के समय टेप तो थी नहीं पहले, बाद में टेप रिकॉर्ड आए, तो बाबा की मुरली को शॉर्ट हैंड, अपनी शॉर्ट हैंड बनाना। शॉर्ट हैंड पढ़ी कोई नहीं यहां दादियां, लेकिन वो शॉर्ट हैंड ऐसी थी, परमात्मा लिखना तो पी लिख दिया, बाबा लिखना तो बी लिख दिया, ड्रामा लिखना तो डी लिख दिया, क्रिएशन क्रिएटर मतलब जो भी था ABCD में ही उनकी शॉर्ट हैंड होती थी। तो यीशु दादी बाबा की हर मुरली को बहुत फास्ट स्पीड में लिख लेती थी और मुझे फेर करके देती थी कि तुम अभी पढ़ो, कोई करेक्शन ऐसा लगे कि बाबा ने ये नहीं बोला तो तुम कर लेना। तो दादी लिखती थी और मैं फिर टाइप करता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बार बार अंदर से आता था कि जब दादी इतनी शॉर्ट हैंड सीख सकती है, ये भी स्कूल तो पढ़ी हुई नहीं है, ये भी तो 6-7 क्लास में पढ़ी होगी, और मैं समझता हूँ 11 साल की उम्र में यीशु दादी आ गई, 11 साल या 9 साल की उम्र थी उसी समय यीशु दादी आई, तो वहां यही पढ़ी। और मैं अगर 10 क्लास पढ़ाऊं तो मैं तुमसे ज्यादा पढ़ाऊं, मैं सीख सकता हूं। तो मैंने भी लक्ष्य रखा कि जिस स्पीड में बाबा बोले उसी स्पीड में टाइप करूंगा। तो इसलिए मैं बाबा के सामने बैठता नहीं था पहले पहले, बाबा चलाता था मुरली और मैं ऑफिस में बैठ करके टाइप पर स्टेंसिल काटता था स्पीड बढ़ाने के लिए, और सचमुच पूरी मुरली मैंने उसी स्पीड में टाइप करना शुरू कर। फिर दादियों ने कहा कि नहीं तुम सिर्फ मुरली टाइप करने की ड्यूटी नहीं, लेकिन बाबा रात भर बैठता है तो तुम रात भर बाबा के साथ बैठो और नोट लो, नोट करो क्या बाबा बोलता है। तो उस समय तो बाबा रात शाम को 7 बजे 6:30 बजे आ जाता था और सुबह 7-8 बजे तक बैठता था, माना 12 घंटा 14 घंटा बैठा हुआ और नॉन स्टॉप बच्चों से मिलना, बीच में गैप नहीं होता था। एक बच्चा गया दूसरा आया, वरदान दे रहा 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, फिर उसके बाद ग्रुप मिलना शुरू हुए। तो सारी बातें जितनी बाबा बोलता था वो मैं सारी रात बैठ के लिखता था, इसलिए मैं भी बाथरूम भी नहीं जाता, बैठा रहा जैसे बाबा बैठा मैं भी बैठा हूं, क्योंकि मैं जाऊंगा तो मिस हो जाएगा। तो उसके बाद दीदी को संकल्प आया कि तुम इतनी मेहनत करता है रात भर तो मैं तुमको एक टेप मशीन देती हूं। ठीक है, टेप दिया, टेप भरता था तो मेरा तो डबल टाइम जाता था, टेप सुन करके टाइप करना पड़ेगा। तो मैंने कहा दादी मेरा तो अच्छा है कि बाबा बोलता जाए मैं टाइप करता जाऊं, जितना बोले मैं टाइप करूं। कहते ठीक है ये भी समय आएगा, लेकिन रात भर जो मैं लिखता था, ये जो मैं सुनाना चाहता हूं वो ये सुनाना चाहता हूं दीदी और दादी की नम्रता, उनकी निर्माणता। क्योंकि बाबा आया और मुरली सुनाना शुरू किया तो बाबा दीदी दादी को कहता था तुम भी रेस्ट करो, क्योंकि तुमको सेवा बहुत करनी दिन में, रात को बाबा के सामने बैठने की जरूरत नहीं है। एक ब्राह्मणी रहती थी, चाहे मोहिनी बहन बैठती चाहे दादी मां रुक्मणी दादी थी, कोई एक बाबा के साथ बैठती थी जो पार्टी को मिलाती थी, बुलाती थी, वो बाबा के पास आते थे मिलते थे, बाकी सब दादियों को बाबा छुट्टी दे देता था, विश्राम करो जब बाबा छुट्टी लेगा विदाई लेगा तब आ जाना। तो दीदी दादी को ये रहता था बाबा ने रात भर क्या बोला, तो मुझे ड्यूटी दी थी कि जितना बाबा बोलता है वो तुमको सुनाना मुझे। आप समझ सकते हो मैं कैसे समय पाया दीदी दादी के। तो मैं रात भर लिखा जो तो कई पेज लिखते थे, मतलब 50 पेज 100 पेज 60 पेज जितना बाबा बोल जाता था रात भर में। फिर दूसरे दिन कहती थी अच्छा कोई बात नहीं केवल मेरे क्यों सुनाओगे, तुम आओ क्लास में बैठ के सुनो। अभी उनकी निर्माणता देखो कि वो दोनों के सोफा तो था नहीं, मुझे गद्दी बिठा दिया अगर तो कहाँ बैठेंगी वो सामने बैठी होती थी और मेरा तो क्या होता होगा, दीदी दादी और सब बड़े आकर के सामने बैठ जाएं तो मेरे को तो बहुत पहले डर लगता। तुम डरो नहीं, तुमको बाबा की तरफ से बाबा ने जो आज बोला वो सुनाओ, सिखा दिया बोलना। तो रात भर जो हम लिखते थे और दो तीन दिन बाबा जब तक दोबारा आता था तब तक पूरा क्लास मेरा ही रात को होता था और दीदी दादी स्टूडेंट होते थे और क्या चाहिए, इतने नम्र चेत इतने निर्माणता से, कोई बात अगर मैंने गलत लिखी हो कोई गलत बात नहीं उनको समझ में आई हो कहती ये बाबा नहीं बोलेगा, ये तुमने शायद गलत लिखा हो, इसे कट कर दो। उसी से मुरली बनी फिर अभ्यक्त बाबा की मुरलियां जो रात भर हम सुनते थे पार्टियों के साथ ये वो सब मुरलियों के बीच में उसको हमने शुरू किया। तो इस प्रकार बाबा की मुरलियां बढ़ती गई, संख्या बढ़ती गई, कंप्यूटर युग आया, उसका विस्तार तो भी आप देख रहे हो। कहां मैं खुद 8 डिपार्टमेंट में सेवा देता था, रात का ड्यूटी दिया, धोबी घाट किया, पानी गर्म किया, कमरों में पहुंचाया और कई काम स्थूल होते थे क्योंकि मजदूर यहां घर में नाट अलाउ थे। मधुबन के अंदर एक भी मजदूर नहीं था क्योंकि बेगरी पार्ट था, बेगरी पार्ट थोड़ा सा बाहर के बच्चे तो थे नहीं विदेश के। और बाबा और दीदी दादी ने इतना इकोनॉमी से चलाया, इकोनॉमी के दो चार उदाहरण मैं आपको बताता हूं। इकोनॉमी और फ्राक दिल दोनों का दीदी दादी के जीवन में बहुत बैलेंस था, एक भी यज्ञ का पैसा कहीं व्यर्थ जाए दीदी दादी को सहन नहीं होता था। मान लो अगर मेरा रुमाल भी गुम हो गया ना तो दूसरा रुमाल मुझे तब मिलेगा जब पहला रुमाल मैं ढूंढ करके दिखाऊंगा। कोई भी कपड़ा किसी का क्यों गुम हुआ, धोबी घाट में जाता था जनरल में और अगर कोई बिना नाम चला गया किसी कारण से नहीं मिला तो दूसरा कपड़ा नहीं मिलेगा, क्लास हो जाता था उसके ऊपर। इसलिए सभी बहुत संभालते थे, कभी भी क्लास हुए बिना हम लोगों को अगला कपड़ा नहीं मिल सकता था। तो इसलिए बहुत ध्यान था दीदी दादी का यज्ञ के ऊपर और एक एक के हर बात पर ध्यान। आज तो कोई पूछता ही नहीं आप अमृत वेले उठे या नहीं, मुरली सुनी या नहीं सुनी, बाबा को इतना बोलना पड़ता है बच्चे मुरली रोज सुनो मुरली रोज सुनो। उस समय तो हम थोड़ा परिवार छोटा परिवार था और दीदी दादी की फूल नजर रहती थी, कौन आज योग में नहीं आया, कौन आज मुरली में नहीं आया। एक दिन की बात सुनाता हूँ, हम लोगों की आदत बन गई थी मुरली के बाद योग करके कभी कभी सो जाते थे और दीदी दादी को रहता था ये सब यंग बच्चे हैं, छोटी उम्र है 18-20 साल के हैं, तो ये लोगों को अगर सोएंगे तो सुस्ती वार करेगी, आलस्य आएगा, फिर इनकी मुरली मिस हो जाएगी। क्योंकि योग के बाद सो जाओ तो बहुत अच्छी नींद आती है, कहीं इतना समय निकल जाता है। तो दीदी दादी ने क्या किया, एक मिलिट्री से रिटायर भाई यहां आया और उसकी ड्यूटी लगाई कि तुम इनको पीटी सिखाओ, परेड कराओ सुबह सुबह। तो हम सब जो बिस्तर पर चले जाते थे ना तो वो सुबह सुबह 5 बजे 15-20 मिनट छूटता था योग के बाद, जा करके देखता था कौन कौन सोया है और वो बड़े प्यार से पहले तो जगाने की कोशिश, नहीं जगता था तो ऊपर आके बैठ जाता था और हिलाता था अच्छी तरह से, नहीं तो फिर पानी ले आता था ऐसे छिड़क देता था। दादी ने कहा है चलो पिटी दौड़ना है नक्की लेग पर दौड़ लगाना, 25-30 लोगों को इकट्ठा कर लेता था, सबको भाई भाइयों को भी बहनों को भी जगा लाता था, बुजुर्ग था वो खुद दौड़ता था। तो हम लोगों को साथ साथ लेकर के सवेरे सवेरे 5:30 बजे नक्की लेग पर दौड़ाता था, एक्सरसाइज पिटी ये करो ये करो, कोई सुस्ती नहीं होनी चाहिए, तो बाबा ने दादियों को ट्रेनिंग दी थी। तो दीदी दादी तो मुस्कुराती थी कि अच्छा है एक अच्छा दादा मिल गया अभी, लेकिन बहुत चुस्त बना दिया। फिर भी कभी कोई अचानक सो जाए कोई कारण से, एक बार क्या हुआ दीदी दादी ने बड़ी युक्ति रची, कोई कोई नहीं आते थे योग में तो सवेरे सवेरे ऐसे घूंघट करती ना माताएं, दीदी दादी ने दोनों ने घूंघट निकाला, नई बात सुना रहा हूं आपको, और घूंघट निकाल करके भाइयों की तरफ आ गई जहां हम लोग रहते थे। हम लोग एक साथ 5 कमरे थे, 25-30 भाई रहते थे, ये लाइट हाउस है इधर इसमें रहते थे। तो दीदी और दादी दोनों ने सवेरे सवेरे चार बजे योग के बाद उठी और योग उठ करके दोनों ने घूंघट निकाला और उस सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गई। तो सही उस समय मैं ब्रुस कर रहा था, वास वेसन बाहर ही खड़ा था, दो तीन भाई हम खड़े थे और हम लोगों ने जोर से आवाज लगे, रे माताएं तुम कहां आ रही हो इधर, ये भाइयों के कक्ष है, भाई लोग यहां रहते हैं, तुम लोग जाओ उधर, जाओ उधर नीचे। तो दीदी कहते ऐसे किया, बोली नहीं, बोली। हम लोग डर गए, हमने समझ गए अब से आईडी आया है कुछ। दीदी दादी ने सीटी मारी और बोलती इधर आ जाओ, चुपचाप सब आ जाओ मेरे साथ, तुम बताओ कौन कहां सोया हुआ है, कौन कौन किसकी चारपाई कौन, दादी दीदी क्या पता। हम लोगों को साथ लिया और हर कमरे के आगे झांका और कहने लगी इस चारपाई कौन रहता है, इस चारपाई कौन रहता है, ये कौन सोया हुआ, ये कौन सोया, सब नोट किया, कहता लिखो नाम लिखो, और कहती बोलना नहीं कौन आया है, बताना नहीं, जगाना नहीं किसी को, सोने दो। नेचुरल है, जब उतर के वो चली गई तो हंगामा तो हो गया, हलचल तो हो गई कि दीदी दादी सब किसी आईडी करके चली गई, सब डरने लगे अब क्या होगा पता नहीं, अब कौन सी सजा मिलेगी। तो नोट हो गए थे नाम, फिर मुरली क्लास पूरा हो गया, नाश्ता सबने कर लिया, उसके बाद दीदी बैठी अपने ऑफिस में, यहाँ कमरा जो है ना वहाँ ऑफिस है उनका, जहाँ हम लोग पहरे पर इधर बैठते हैं ना वही कमरा था दीदी का। और दीदी क्या करती थी, घंटी रखती थी, आवाज नहीं थी, घंटी रखती थी, बजाती थी, पहरे वाले को बुलाती थी। और दीदी का बड़ा प्यारा शब्द था सटकर, फलाने को सटकर, माना सटकर माना बुला लाओ सिंधी में। तो बस लगी हाजिरी सबकी, पहरे वाले की ड्यूटी लगी कि ये नहीं था इसको बुलाओ, इसको बुलाओ, इसको बुलाओ। अब उसको तो पता चल गया आज मेरी खिंचाई होनी है, कुछ न कुछ डांट लगेगी। तो दीदी आ बैठती थी और सबको बुला के प्यार से सामने बिठाती थी, वैसे दृष्टि बहुत प्यार से दृष्टि देते। नाश्ता किया, नाश्ता किया, क्या खाया आज, बहुत प्यार से। फिर पूछ पूछ करके, अच्छा नाश्ता करने के लिए टाइम है, बाबा से बात करने के लिए टाइम नहीं है ना, योग करने के लिए टाइम नहीं है। ध्यान रखो यहाँ पर सफेद कपड़े वाले मजदूर भी हैं, तो मजदूरी करने थोड़ी आए हो। अगर पढ़ाई से, अमृत वेले से, योग से प्यार नहीं है तो क्या रोटी कपड़े के लिए यहाँ यज्ञ में समर्पित हुए हो। बहुत प्यार से सिखाया, बहुत प्यार, जरा भी डांटा नहीं किसी को। आगे के लिए ध्यान रखना, सबके कान खड़े हो गए हैं, सब अलर्ट हो गए। ऐसे अमृत वेले की इतनी न्यू डाल दी है, आज तक मुझे कभी अनुभव नहीं है, 42 साल मधुबन में रहते हो गया कि मेरा अमृत वेला कभी मिस हुआ होगा। अलार्म की जरूरत ही नहीं है, ऐसी आदत बन गई। मुरली अगर एक दिन की मिस हो जाए, कितनी बार हमने टाइप की, कितनी बार पढ़ी, लेकिन एक दिन की, उस दिन की मुरली मिस हो जाए तो लगता है जैसे आज भोजन ही नहीं किया है, आज कुछ मिसिंग है। क्योंकि उसके प्रति उन्होंने इतना प्यार पैदा किया, यही तुम्हारे ब्राह्मण जीवन की नींव है। अगर यही नहीं करोगे तो किस लिए यहां समर्पित हुए हो, इस दुनिया पड़ी है, जाओ कमाओ खाओ। तो ये एक बहुत प्यार प्रेम की पालना, पालना देने का तरीका इतना अच्छा था। मान लो अगर मैंने हार्ड वर्क किया, धोबी घाट करके आया, हमने अगर कपड़े सटके लगाए, नहीं लगाने वाले को सिंगल है, लेकिन अगर सटके लगाने वाले को तो डबल हलवा मिल रहा है। तीन चार भाई हम कपड़े सटके लगाते थे, मजबूत थे, दूसरे लोगों को नील की ड्यूटी थी, निचोड़ने की ड्यूटी थी, सुखाने की ड्यूटी थी, 10-12 भाई होते थे, लेकिन जो छटके लगाते थे उनको डबल हलवा मिलता था, उनको विशेष स्पेशल प्यार मिलता था। तो दीदी दादी के अंदर ये रहता था कि जो इन्होंने किया है, एक दिन क्या किया, बोली ग्रुप आ रहा है, टीचर्स की भट्टी रखी है, सबको नेपाली साल मुझे देनी है, और जो भाई सिलाई जानते हैं, थोड़ी बहुत भी जानते हैं, सब मदद करो, टेलर डिपार्टमेंट, तुम्हारे रमेश भाई है ना लिटरेचर वाले, वो उस समय टेलर थे यहाँ, तो उन्होंने तीन चार भाइयों को जो जानते थे, उनके दोस्ती में थे, उनको बिठा लिया अपने साथ, और करीब 150 नेपाली चादरें, 150-200 सिलाई करनी थी। तो रात को ही दीदी ने बोला कल देना है मुझे, कहीं से कैसे भी सिलो। और रात भर बेचारों 3-4-5 बैठ करके पूरी रात सिलाई किया। तो दीदी सवेरे सवेरे लच्छू दादी को साथ लेकर के, और बादाम का इतना पैकेट लेकर के साथ में टेलर डिपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे। तो ये लोग अपना बंद करके बाहर निकल रहे थे। बोली तुम लोगों ने अभी तक लगता है काम नहीं किया है, कब करोगे? तो वो टेलर रमेश भाई बोलता है दीदी काम तो हो गया, छतरे तो तैयार हो गए। अच्छा कैसे तैयार हो गए दिखाओ। खुलवाया डिपार्टमेंट, फिर देखा सारा, देख करके कहती है आज तुम्हारे लिए मैं बादाम की बोरी लाई हूं, ये सब बादाम की बोरी दिया, इतने बोरी माना थैली थी, बादाम खाना सब लोग बहुत प्यार से, बहुत प्यार किया और क्लास में आके महिमा किया। जरा भी कोई सेवा किया अगर अच्छी यज्ञ की, दादी दीदी के कहने अनुसार कोई ने यज्ञ की सेवा किया तो दीदी दादी उसकी खूब दिल से क्लास के बीच में खड़ा करके महिमा करके उनको और खुश कर देते थे, और कुछ न कुछ स्पेशल गिफ्ट स्पेशल सौगात उसको मिलती थी। अभी एक दो कहानियां और सुनाता हूँ, यज्ञ का इतिहास बहुत बड़ा है, कई घंटे लग जाएंगे। तृप्ति बहन एक बजने वाला है इसलिए एक दो बातें इनको और सुना देता हूँ, ऐसे सुन रहे हैं जैसे छात्र यज्ञ की कहानियां है ना, क्योंकि ऐसी हम सबको पालना मिली है बाबा के यज्ञ में। सचमुच सब कुछ सीखा देखा, इसकी वृद्धि देखी, विस्तार देखा, आप समझ सकते हो एक छोटा सा घर देखा हो, एक छोटा सा स्थान देखा हो और आज इतना बड़ा विशाल शांति वन, मनमोहिनी वन, संजय पार्क, इतना बड़ा घर देखते हैं। उस समय 200 लोग हम लोगों के लिए लगते थे बहुत ज्यादा है, आज 20-25-30 हजार का ग्रुप आता है, तो देख के तो लगता है कैसे बाबा का यज्ञ विस्तार को पाया है। किसने किया? बाबा तो वतन में है, गुप्त रीति से सब कुछ करा रहा है, खेल तो उसी का है, सब कुछ नाटक तो उसका ही है, लेकिन बच्चों को कैसे उसने निमित्त बनाया और दीदी दादी को कैसे उसने इतनी उमंग भरा, उत्साह भरा, उनके एक उमंग उत्साह की बहुत अनेक कहानियां हैं। यज्ञ वत्सों को कैसे सेवा इनसे करानी है, कभी भी किसी से भी कोई सेवा लेनी हो, बोरियां उठानी होती थी, मजदूर नहीं थे, अनाज तो रखा जाता साल भर का स्टॉक, हमेशा डायरेक्शन होता है कि हर स्थान पर 6 महीने का स्टॉक होना चाहिए, कभी इमरजेंसी कोई भी बात होती है, कर्फ्यू लगती है, बाढ़ आ जाती है, कोई लड़ाई लग जाती है, कुछ भी होता है, ऐसा नहीं है हमारे बाबा के बच्चे कहे हमारे पास कुछ खाने के लिए नहीं है। मधुबन से जब तक दादी थी मैं हर 6 महीने में डायरेक्शन भेजता था, याद है, हर 6 महीने में डायरेक्शन जाता था कि हर सेंटर पर नमक से लेकर के दिया सिलाई से माचिस से लेकर के हर चीज 6 महीने का स्टॉक हर एक के पास होना चाहिए। उसके बहुत अच्छे अनुभव तृप्ति बहन के पास भी है। बाढ़ आई थी उस सूरत के अंदर, उस समय सब लोग पानी के अंदर थे और तृप्ति बहन का सेंटर उनको पूरियां बना बना के भेज करके खिला रहा, तैर तैर के लोग गए हैं वहां, वही डायरेक्शन पालन करके कई फायदे हुए हैं। तो दीदी दादी का यही लक्ष्य रहता था कि घर में जो स्टॉक रहता है उस पर मजदूरों की नजर नहीं होनी चाहिए, कारण तो कुछ और ही थे लेकिन मजदूरों की नजर नहीं होनी चाहिए। और पतित लोग बाबा के घर में यहाँ आके झाड़ू लगाएं, दीदी दादी कमरे को टच करें, नहीं कोई मजदूर नहीं आए, तो हम लोग ही सब करते थे, भाई कमरे साफ करने हैं, भाई जा रहे हैं, बाबा कमरा साफ करना, ये करना है। अनाज साफ करते थे तो अनाज का एक दो सिस्टम थे हमारे, चावल को चांदनी रात में सुखाते डालते थे, पता नहीं क्यों डलवाती थी दादी, शायद उसके जो कीड़े चांदनी रात में शीतलता में भाग जाते होंगे, साफ हो जाता होगा, तो सब बोरियां चांदनी रात में शांति स्तंभ पर खोल देते थे। और गेहूं को पूरा धुलाई करते थे, धुलाई के बिना गेहूं यहां पीसा नहीं जाता था, तो जितना गेहूं आता था सब पानी के अंदर डालते थे, धुलाई करते थे, फिर सुखाते थे। तो रात भर कभी कभी हम वहीं डाल के चले जाते थे शांति स्तंभ पर, और अचानक मान लो बरसात आ गई, तूफान आ गया, तो क्या होगा, उठाएगा कौन? अब 50 बोरी गेहूं मान लो बाहर पड़ा है, तो दादी को तो बहुत अलर्ट थी यज्ञ की, एक चीज की भी नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको तो नींद ऐसे आती नहीं थी, जवाबदार थी यज्ञ की, तो दादी सबसे पहले उठ करके आ जाती, बादल देखते ही घंटी लग जाती थी, बादल तेज आए हैं सब पांडवों को जगा दो, तो बेल होती थी, एक झाड़ है ना वहां पर एक बेल थी, अभी शायद नहीं है, और वो बेल बजना माना हर एक को कमरा छोड़ के बाहर आना है, कोई भी काम हो बेल बज गई माना हमको इमरजेंसी है कोई, तभी बेल बजती है। तो दादी जब देखती थी ऐसा कोई बादल आ गया, ऐसा कोई बात हो गई, तो बेल बजवा देती, पहले वाली बजाओ बेल, बस बेल बजी और हम सब जिस तरह से हैं कमरों से बाहर आए, और आते थे तो कहती थी अभी चलो हम सब मिलकर के गेहूं उठाते हैं, चावल उठाते हैं, सब बड़ा है। रात को ही जाग करके सब उठा लेते, जब तक बरसात आए तब तक हमारा सब साफ वहां से सफाई हो जाती थी। लेकिन दादी दीदी का ये रहता था कि हम वहीं पर रहें, साथ में रहें और खुद उठाने लगती थी, साथ में मदद करते थे, क्योंकि उनको इतना यज्ञ से प्यार, एक एक चीज से प्यार कि कोई चीज का नुकसान नहीं होना चाहिए और कोई भी अलबेलापन कोई बहाना नहीं बना सकता मेरे इस कारण से नहीं आया, इस तकलीफ से नहीं आया। नहीं, बाबा के यज्ञ की सेवा करोगे तो तंदुरुस्त हो जाओगे। और हम लोगों का सचमुच ही अनुभव है, तन बाबा के सेवा में लगाया, आज तन भी बिल्कुल साथ दे रहा है, अंत तक कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। मन बाबा के यज्ञ में सेवा से, मन से सेवा दिल से की है, इसलिए मन मना भाव होने में कोई तकलीफ नहीं है। और बाबा कहता अगर यज्ञ की इकोनॉमी की है, कोई चीज बचत की है, तो जो संकल्प करोगे वो पूरा हो जाएगा। इसलिए धन आपका तब लगा जब आपने धन दान करने वालों के धन को बचाया, व्यर्थ नहीं किया, वो आपके खाते में जमा हो गया। तो हम सबका ये प्रैक्टिकल अनुभव रहा है कि आज तक तन मन धन जो बाबा के कार्य में मेरा सफल हुआ, उसके परिणाम स्वरूप आज हम लोग बहुत अच्छी निश्चिंत और बेगमपुर की स्थिति का अनुभव करते, कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं। हम कहते हैं हम सब सबके कपड़े धोए तो आज ऐसा समय आ गया जो हमको रूमाल भी धोना नहीं पड़ता, वो भी धुल के मिल जाता है। तो ये बाबा की देन इसी समय है ना, भविष्य के लिए किसने देखा। दादी जी का जो एक उमंग उत्साह था ना, उस उमंग उत्साह ने यज्ञ को बहुत आगे बढ़ाया। एक बार की बात हमने कई बार क्लास में सुनाई है, आपने सुनी होगी कि एक बार मधुबन में हम लोग उस समय कोयला और लकड़ी ही यूज करते थे, डीजल पेट्रोल तो था नहीं, स्टीम भी नहीं थी, और कोयले का हमेशा धनबाद से, उस समय धनबाद के अंदर झरिया धनबाद उस साइड से कोयला मंगाया जाता, ट्रक में आता था या ट्रेन से आता था। हमारे दो भाई यहाँ थे, रेलवे के रिटायर भाई थे, समर्पित थे, एक का नाम था खन्ना जी और एक का नाम था गुरुमुख दादा, वो रिटायर थे, 60 साल की उम्र के बाद आए यज्ञ में। और ट्रेनें उस समय जो चलती थी ना कोयले वाली, कोयला डालते थे ट्रेन के अंदर, वो आग से गर्म करके भाप बनाते थे, उन ट्रेनों के वो ड्राइवर थे और वो दोनों यज्ञ में समर्पित हो गए। उन दोनों ने यज्ञ को इतना इकोनॉमी से चलाया, वो दोनों भाइयों की क्या आपको कहानियां सुनाऊं मैं। खुद खन्ना भाई बहुत बुजुर्ग था, 70 साल की उम्र के बाद सब जगह जाके जहां से इकोनॉमी से पैसा कोई चीज मिलती थी, तो एक बार वो गया धनबाद के अंदर और पूरी ट्रेन कोयला ले आया बुक करके, एक साथ एक ट्रेन पूरी सब डिब्बे में कोयला ब्रह्मा कुमारी का, और वो ट्रेन यहां करके खड़ी हो गई। उस समय होली की छुट्टियां थी तो वहां से नोटिस पर नोटिस कि अगर 3 दिन के अंदर ट्रेन को नहीं खाली किया गया तो इतनी पेनल्टी पड़ेगी, 1000। और दादी को होता था यज्ञ का एक पैसा भी यहां व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, क्यों पेनल्टी पड़ेगी, क्योंकि मजदूर नहीं है यज्ञ में, कोयला कौन खाली करे, मजदूर चाहिए उसके लिए। ट्रक हमारे पास एक ही था मधुबन में, तो दादी को बड़ा नशा था, पांडवों को देख करके इतना खुश होती थी, तो आ गई, नाम ही था कुमार का दादी, तो कुमारों को देख करके अरे बस आई क्लास के बीच में और कहती है एक हनुमान था पवन पूत, सुनो कहानी कुमारों की, पवन पूत था और उसको क्या नशा था, राम का मैं दूत हूं, और लक्ष्मण को जब कोई जरूरत पड़ गई दवाई की तो उसको लेने के लिए वो पहाड़ पर चला गया, जब उसको दवाई की पहचान नहीं मिली तो उसने पूरे पहाड़ को उठा लिया और पहाड़ पर एक हाथ पर उठा करके वहां से कहां से लेकर के हिमालय से लेकर के और लंका में पहुंच गया रातों रात। कितना पहलवान था, एक हनुमान, एक ब्रह्मचारी, एक पवनपुत, और हमारे पास तो ये कितना बड़ा ग्रुप सेना है पवनपुत की, पवनपुत की इतनी बड़ी सेना, इतने बाल ब्रह्मचारी क्या नहीं कर सकते हैं, और एक छोटी सी ट्रेन आई है कोयले की और वो मजदूरों के कारण खड़ी है, कहते हैं पेनल्टी लगेगी, दादी पेनल्टी क्यों भरेगी, जिसके पास इतने महावीर हैं वो पहाड़ उठा लाया था, ये ट्रेन खाली नहीं करेंगे क्या। बहुत नशा चढ़ाया और खूब नशा चढ़ा करके और कहती चलो सब तैयार हो जाओ, ड्रेस बदलो चलो सब। बहुत सारे भाई तो उमंग उत्साह में आ जाते, नशा चढ़ जाता तो चल दिए, और सचमुच ट्रेन को एक ही दिन में खाली करके पूरा ट्रेन खोला। ऊपर पांडव भवन ही था, ज्ञान सरोवर शांतिवन तो था नहीं, जो बीच में कहीं रोके, सब उठा के पांडव भवन तक ले आए दिन भर में। तो दादी को बड़ा प्यार था कि दादी इतनी मेहनत पांडवों ने हमारी की है, हाथ मुंह सब काला है, सब कपड़े खराब हो गए, तो मैं इनको स्पेशल बाबा से मिलाऊंगी और बाबा स्पेशल इनको मिले और टोली खिलाए। बाबा तो दादी के हाथ में था भाई उस समय, जो कहे बाबा को मानना ही पड़ेगा। तो दादी ने बाबा को बड़े प्यार से कहा, बाबा दादी गुलजार दादी को बोला कि हमारे पांडवों ने आज बहुत मेहनत की है और दादी का दिल है कि बाबा इनसे स्पेशल मिले। तो दादी कहने लगी जैसी आपकी आज्ञा, जो दादी कहे। दादी तो इतनी आज्ञाकारी, पता ना कैसे कैसे बाबा को बुलाते थे। एक बार मैंने कहानी सुनाई थी, पहली पहली कार आई तो कार में तीनों दादियां बैठ के गई ड्राइवर के साथ, पहली कार थी मधुबन की, और गुलजार दादी बीच में थी, एक तरफ दीदी एक तरफ दादी, आगे ड्राइवर, और लेके गई हनीमून पॉइंट तरफ, अनादरा पॉइंट पर खड़ा कर दिया गाड़ी को। बोलती पहली पहली गाड़ी है, मैं क्यों बैठूं, पहले बाबा बैठे ना, बोल जाओ बाबा के पास और बाबा को बोलो नई गाड़ी आई है, पहले बाबा बैठेगा तब दादियां बैठेंगी, नहीं तो नहीं बैठेंगी। गुलजार दादी बेचारी क्या करे, कार में ही बैठे बैठे बाबा के पास चली गई। कार में बैठे बैठे बाबा के पास चली गई, बाबा को बोला बाबा ये दादियां तो कहती हैं बाबा गाड़ी आई है, बाबा ने दी है, बाबा इसमें बैठे। बाबा आ गया, उसी समय आ गया, वहीं पर ही आ गया, और बाबा आया दृष्टि देने लगा दोनों दादियों, दादी समझ गई बाबा आ गया। फिर दादी को बाबा को उतारा गाड़ी से, बाबा को चारों तरफ चक्कर लगवाया, बाबा ये गाड़ी मिली है बहुत अच्छा बच्चे यूज करो, अच्छी तरह से बाबा ने दृष्टि दी, उद्घाटन किया और बैठ करके चला गया। तो दादी को जितना अधिकार था ना बाबा के ऊपर, जब कहे आ जाए, तो बाबा आ गए हम सबके बीच में। और बाबा ने पहले बहुत अच्छी तरह से, बाबा तो बहुत प्यार करता ना, विशेषताएं सुनाई अच्छी तरह से, अच्छा पांडवों ने बहुत अच्छा काम किया, ये तो दादी ने कहा और बच्चों ने किया वाह। लेकिन जब दादी आज सवेरे हाथ उठवा रही थी तो बाबा ने एक दृश्य देखा। अब बाबा तो पोल पट्टी जानते ना, तो बच्ची जब क्लास में सवेरे आई और सबसे हाथ उठवाने लगी तो बच्चों की सभा में तीन प्रकार के बच्चे बाबा को दिखाई दिए। उसमें एक प्रकार के थे दादी कह रही है हम जरूर जाएंगे, उनको उमंग था उत्साह था और गए और सचमुच कमाल का काम करके आए। दूसरे थे जो थोड़ा दमा या कोई खांसी या कोई बीमारी उसके कारण सोच रहे थे इतने सब करने वाले हैं, मैं नहीं गया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन तीसरे ऐसे बच्चे थे जो कह रहे थे पता नहीं दादी को क्या जोश आता है, दो दिन में क्या पेंडेंटी पड़ जाएगी, छोड़ो ना इसमें हाथ मुंह क्यों काला करें। और दूसरे जो जा रहे थे उनको भी कह रहे थे छोड़ो ना दादी तो हमेशा कहती रहती है। बाबा सब देख रहा था कि बच्चों के अंदर एक उमंग उत्साह वाले, दूसरे बेपेशेंट, और तीसरे जो उमंग उत्साह शक्ति होते हुए भी दूसरों के उमंग उत्साह को खत्म कर रहे थे। तब बाबा ने इस पर क्या गहन गति सुनाई कर्मों की। बाबा ने कहा कि बच्चे जिनके अंदर 100% उमंग उत्साह है उनका भाग्य तो बन ही रहा है, लेकिन जिनके अंदर उमंग उत्साह नहीं है, नहीं कर सकते हैं, अगर कोई कमजोर है, कोई ऐसा है जो जिसके पास थोड़ा उमंग कम दिखाई देता, अगर खुद नहीं कर सकता है दूसरे का उमंग वो बढ़ा दे। दादी कह रही है ना करना चाहिए, मेरा कोई कारण है मैं नहीं जा सकता, आपको तो जाना चाहिए। अगर 14 आने वाले का 16 आना उसने कर दिया तो 2 आना उसके हिस्से में जमा हो जाएगा, लेकिन जो कर रहा है और उसकी उमंग खत्म कर दिया तो उसका तो खत्म हुआ, लेकिन जिसने कम किया उसके ऊपर बोझा चढ़ गया। ये बहुत सुंदर ज्ञान समझ कर्मों की बाबा ने उस समय हम सबको दी। और ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, हमारे ब्राह्मण परिवार के अंदर कईयों के अंदर बड़ा तिल होता है, बाबा का यज्ञ इतनी जरूरत, ये चाहिए ये चाहिए। अभी अभी फोन करके आया हूं मैं, हमारे साथ अरविंद भाई बैठे थे, एक फोन आया जयपुर से, और वो जयपुर से फोन से कहता है भाई जी मैं एक ट्रक सब्जी भेज रहा हूं, तो मेरे को लगा ये मेरे काम की बात तो नहीं है, मैं क्यों इस फोन को अटेंड करूं। मैंने कहा भाई किससे बात कर रहे हो? बोला मैं राजू भाई से बात करूं। मैं राजू भाई हूं लेकिन मेरे से सब्जी का कनेक्शन नहीं है, मेरे से मुरली की बात करो। बोला भैया आपने पिछले क्लास में मधुबन की भट्टी में मैं गया था जयपुर के ग्रुप में, तो आपने बड़ी अच्छी एक कहानी सुनाई थी यज्ञ कैसे चलता है। तो आपने कहा था कि जिसके पास जो शक्ति होती है, कोई गेहूं भेजता है, कोई चावल भेजता है, कोई गुड़ के ट्रक भेज देता है, आज आम हुए तो कहीं से आम के ट्रक आ रहे हैं। ये मैंने सुनाया होगा कहानी कि यज्ञ इतना चल रहा है, हजारों लोगों का भोजन बन रहा है, हजारों लोग आ जा रहे हैं, कैसे चल रहा है? बाबा के बच्चे ही कर रहे हैं, यज्ञ तो कहीं से मांग नहीं रहा है। जिसके पास जो शक्ति है करते हैं, प्यार से बाबा का यज्ञ में देते हैं, उनका तन मन धन सफल होता है। और कोई गुप्त करता है तो बाबा कहता है मैं रिटर्न देने के लिए बंद जाता हूं। तो ज्ञानी समझदार तो वो है जो बिना कहे करे, और एक हाथ से करे और दूसरा बिना देखे। वर्णन क्यों करे? कई लोग पूछते हैं तुमने कितना किया, तुमने भंडारे में कितना किया? अरे इतना क्यों किया, यहाँ तो बहुत लोग करने वाले हैं, यहाँ तो ऐसे उड़ा देते हैं। अरे उड़ाने वाले उड़ाएंगे, वो बोझा उन पर चढ़ेगा, तुम क्यों सोच रहे हो? तुम तो कम से कम अपना भाग्य बना लो, जो करेगा वो पाएगा। आपने अगर बाबा के यज्ञ के लिए कुछ भी दिया, कितना भी दिया, आपने दिल से दिया, भगवान ने स्वीकार कर लिया, आपका तो भाग्य बन जाएगा, तो बन जाएगा ऊपर वाला देने के लिए। बाकी अगर व्यर्थ करने वाला समर्पित या कोई भी टीचर या भाई बहने उसको कुछ गलत रूप से यूज करा तो बोझा तो उसके ऊपर चढ़ेगा, आपको तो खाते में घाटा नहीं होगा। लेकिन आपने अगर कह दिया कि हमने इतना दिया, इसने ऐसा व्यर्थ किया, हम तो इकोनॉमी करते हैं, हम तो ऐसे घर में रहते हैं, तो बहुत हार्ड पोर्सर है, तो तुमने अपना खाता खत्म कर। इसलिए बाबा कहता है बच्चे गुप्त दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य। संकल्प आता है कर दो, जो आता है वो कर लो, पूछो नहीं किसी से, पूछोगे पूछ लग जाएगी। तो उस भाई ने मेरे से पूछा, तो हमने कहा अच्छा कितना भेजना चाहते हो? बोला 3 टन टिंडा है, बहुत अच्छी भिंडी है, मिर्ची निकली हुई है, मैं सोचता हूँ पूरा ट्रक भर करके कल भेज दूं। बात कर रहा था जयपुर से। हमने कहा जब भेजना ना तो मेरे को फोन कर देना, नहीं तो पता नहीं कोई रोक देगा तुमको। तो बोला ठीक है, मैं भाई साहब भेज रहा हूँ, मुझे बहुत प्रेरणाएं आई कि यज्ञ में कुछ न कुछ मुझे करना चाहिए, गुप्त दान करना चाहिए, और लेकिन मेरे टीचर को नहीं बताना। हमने कहा क्यों, पता चलेगा तो? नहीं, फिर आगे के लिए हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। कमाल है, ऐसी भी बहनें होती है क्या? बाबा के यज्ञ में अगर कोई करना चाहता है, यज्ञ तो बेहद का है ना, जो सफल करना चाहे करे, क्यों बहने रोकेंगे? फिर हो सकता है कोई कोई ऐसी भी हो, यहाँ करो ना, वहां क्यों करते हो, वहां तो बहुत करते हैं। बाबा के बेहद यज्ञ में जिसने तन मन धन से सफल किया, जानकी दादी का आज तक अनुभव मुझे नहीं भूलता। जानकी दादी कहती थी यज्ञ के प्रति अगर लंदन भंडारी में इतना पैसा आ गया तो मैं उसमें और डाल करके डबल करके यज्ञ में भेज देती थी, कभी नहीं सोचा कि लंदन में कैसे चलेगा। और बाबा अपने आप देता है। अगर आप लोग कभी लंदन का सैर करो, लंदन गए हो या देखा हो, मैं तो लंदन में गया, मैं तो सचमुच देखा, भारत में कोई सेंटर ऐसा नहीं है जितना जैसा दादी के लंदन के सेंटर्स हैं, एक भी सेंटर भारत में ऐसा नहीं। इतना विदेश की कल्चर, उसके बीच में रह करके 250 का क्लास हिंदी क्लास है, 150 का क्लास इंग्लिश क्लास है, केवल एक ग्लोबल हाउस का। मैं तो एक एक सेंटर देख करके ऐसा लगा कि सचमुच बाबा तूने अपनी राजधानी तो यहां बना दी। वर्डिंग देख लो, आज लेस्टर का सेंटर देख लो, लंदन के 10-12 सेंटर, एक से एक अच्छे सेंटर। तो दादी ने जो त्याग किया, जो यज्ञ के प्रति पहला सोचा, आज वो दादी मुख्य प्रशासिका बन गई आके, और दादी ने यज्ञ को कैसे चलाया होगा गुप्त रीति से, आप सब समझ सकते हो। तो यदि यज्ञ के अंदर कोई गुप्त रीति से तन मन धन सफल करता है, अपने पास नहीं है दूसरों का उमंग उत्साह बढ़ा देता है, तो उसको उसके रिटर्न देने के लिए बाबा बंध जाता है। ठीक है, बाकी कुछ प्रश्न है हमारी माताओं के, एक दो प्रश्न मैं अभी जो बोला है मैं बोल देता हूँ, फिर और कुछ पूछना हो तो पूछना। एक माता ने मुझसे पूछा जीते जी मरने का भोग, इसका क्या रहस्य है और ये क्यों लगाना चाहिए, जरूरी है या नहीं, कुछ ऐसा ही प्रश्न था ना? ऐसा ही है ना? वैसे ये सिस्टम जो बनी ना, ये वास्तव में मुझे जहां तक याद है 74-75 में एक बिहार की माता थी, और बिहार की माता ने जिस प्रकार का भोग लगाया आज तक किसी ने नहीं लगाया। मैं उसकी कहानी सुनाता हूँ थोड़ी सी। मारवाड़ी माता थी, उसने ये सिस्टम यहाँ मधुबन में चालू की और उस सिस्टम के अंदर उसने चारपाई भी मरने के बाद दान करते ना, चारपाई बिस्तरा पता नहीं क्या क्या दान करते, मैं तो जानता नहीं दुनिया की बात। दादी को कहा कि गऊ दान से लेकर के मुझे सब कुछ देना है, जीते जी देना है, मरने के बाद पता नहीं कोई करेगा या नहीं करेगा। बहुत बड़े परिवार की थी, मारवाड़ी माता थी। दादी ने कहा ठीक है, ये ब्राह्मण तुम्हें सब भले करो। हम लोगों को चारपाई मिली, चारपाई पर सुला दिया जैसे सुल रहे होंगे ब्राह्मण लोग, मुझे तो पता ही नहीं था। सब बर्तन मिले, पूरा पूरी दहेज मिली, पूरा बिस्तर मिला। उसने दो चारपाई, दो बिस्तर, एक गाय और पता नहीं क्या क्या अपने जीते जी दान किया। और हम सब ब्राह्मण तो थे, ले सकते थे, बाबा ने तुमको सब मुखवंशा वाली ब्राह्मण बनाया ना, तो हम सब ले लिया दान में, क्योंकि उसकी भावना बड़ी ऊंची थी, उसके दिल का प्यार था, वो सफल करना चाहती थी यज्ञ में। तो दादियों को है कि कोई अगर करना चाहता है यज्ञ में सफल तो जीते जी कर ले, मरने के बाद किसने देखा, मरने के बाद पता नहीं कौन क्या करेगा, करेगा या नहीं करेगा। इसलिए उस समय से लेकर के 74 से ही ये सिस्टम बन गई, कोई माताएं अपने जीते जी भोग लगवाती हैं बाबा को कि बाबा अभी मेरा आगे पीछे कौन है, आप ही हो, पता नहीं कोई आगे पीछे कुछ करेगा या नहीं, मैं अपने आप कुछ कर दूं। और जीते जी जब कर लेते हैं तो संकल्प ये है कि हम जैसे दुनिया से तो मर गए, वैराग्य वृत्ति, वास्तव में ऐसा नहीं कि हम संपन्न बन जाएंगे भोग लगाने से, लेकिन एक वैराग्य वृत्ति जागृत हो जाती है। जैसे मरने के बाद कोई भी चीज पिछली याद नहीं रहती, छोड़ा तो छूटा, ऐसे एक जब अगर सच्चे दिल से कोई सोचता है कि मैं तो बाबा की बन गई, तो संबंध है, पदार्थ है, व्यक्ति है, वैभव है, उनसे अपने आप बुद्धि डिटैच हो जाती है। तो ये एक फायदा होता है कि जब भोग लगा देते हैं तो एक संकल्प में दृढ़ता आ जाती है कि मेरा तो संसार में अभी कोई नहीं, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, और साथ साथ उनका सब कुछ बाबा के कार्य में सफल हो जाए। इन दो भावनाओं के आधार से ही ये सिस्टम चालू की गई। कोई भी अगर बाबा का बच्चा, इसमें यंग और बूढ़े की बात नहीं है, कोई भी अगर करना, क्योंकि बाबा कहता है कल का किसी को तो भरोसा नहीं है, कब क्या किसके साथ हो जाए। अगर कोई लगाना चाहता है भोग तो संदेशी को अपना याद प्यार देता है, बाबा के घर में कुछ उसके लिए भोग के लिए पैसा देता है, कुछ भी देता है, तो उसका सफल भी होता है। और जितने दिल से वो करना चाहता है, बड़ा ब्रह्मा भोजन हमारी तरफ से करा दो या हमारी तरफ से भोग लगा दो, तो उसके अनुसार वो अपने आप कराता है और बाबा के घर में उसका सब सफल होता है। ये सिस्टम है।
बहुत सारे क्वेश्चन है,
सवा बज गया,
बहुत समय हो गया। ऐसा लगता है कि भागवत सुन रहे हैं, तो भागवत सुनते रहे सुनते रहे भाई जी के। तो मुझे भी याद आया जब मनोहर दादी ये सुनाते करते थे, सब बहुत अलर्ट होके बहुत समय तक, लंबा समय तक सुनते रहते थे। ऐसा आज भी अनुभव हो रहा था, भाई जी जब दादी जी की बात सुना रहे थे कि ओम शांति भवन जब बन रहा था, तभी हमको भी दादी इतना उमंग उत्साह बड़ा के पत्थर उठाने के लिए उमंग सा देते थे। अभी वो बात याद आई मुझे। एक ही प्रश्न आज भाई जी को पूछ लेते हैं। अभी जैसा अभी जो भाई जी ने कहा दादियों की कहानी, हमारे से हमने दादियां तो अभी इतने है ही नहीं, सब एडवांस में गए हैं, जानना चाहते हैं एडवांस पार्टी क्या कर रही है और एडवांस पार्टी का कार्य कैसे चलता है, कैसे मिलते जुलते हैं। बाकी सब प्रश्न शाम को सुनेंगे जवाब उसका।
ऐसा है कि एडवांस पार्टी का अर्थ क्या है, पहले जैसे स्थापना के समय दादियां निमित्त बनी, फाउंडेशन तो उन्होंने डाला ना, ऐसे ही सतयुग की रचना के लिए ये पार्टी गई है। माना देवताओं को उतारने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। एडवांस माना सतयुग के लिए, नई सृष्टि की स्थापना के लिए पहले से वो गई हुई पार्टी, क्योंकि देवताएं कहाँ आएंगे जो योग बल से जन्म हो, योग की धरणी हो। तो इसलिए जो आत्माएं गई हैं वास्तव में एडवांस पार्टी वाली आत्माएं ज्ञान में नहीं आएंगी, फिर से आ जाएंगे ज्ञान में, बाबा के बच्चे बने, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जहां भी गई हैं वो अपनी जीवन को बचा के, अपनी पवित्र योगी जीवन बना के रखी है। भले उनको बाबा का साकार में कुछ परिचय नहीं है, लेकिन जब वो बैठते हैं तो उनको बहुत बाबा अच्छे अच्छे अनुभव कराता है। एक बार बाबा ने सुनाया था कि मैं इन सबको अमृत वेले वतन में इमर्ज करता हूँ। तो इमर्ज कोई उनके उस रूप को नहीं करता है जो इस समय जिस जन्म में है, उस एज को भी इमर्ज नहीं करता, उस रूप को इमर्ज नहीं करता, संगम के समय के रूप को ही इमर्ज करता है। दादी का दादी रूप में इमर्ज होगी, दीदी दीदी के रूप में इमर्ज होगी, मम्मा मम्मा के रूप में इमर्ज होगी, इस समय का जो रूप है वो इमर्ज नहीं करेगा। और उस आत्मा को कोई भान भी नहीं होगा कि बाबा ने कोई मुझे इमर्ज किया है, क्योंकि वो संपूर्ण आत्मा को बाबा इमर्ज करता है, संपूर्ण रूप को इमर्ज करता है और उसमें वो शक्ति भरता है और वो फिर प्रैक्टिकल जहां है वहां उनके कर्मों में दिखाई देता है। मैंने जहां तक एडवांस पार्टी के बारे में समझा है, बाबा ने एक बार कहा था, मम्मा के लिए ही बात कही थी कि वो सतयुग के देवताओं के लिए श्री कृष्ण को जन्म देने के लिए धरनी बना रही है, जन्म नहीं देगी वो, लेकिन धरनी तैयार कर रही है, गर्भ महल तैयार हो इसके लिए ऐसी आत्माओं को सेलेक्ट कर रही है। तो देवताएं जो 9 लाख पहले उतरेंगे सतयुग के, उसके लिए बहुत बड़ी सेना चाहिए, माँ बाप चाहिए, और वो जो कलयुग के विनाश के बाद बचेंगी आत्माएं वो एडवांस पार्टी की होंगी अधिकतर, और वो बच करके जन्म देकर रिसीव करके फिर वापस वतन में जाएंगे। इसलिए एडवांस पार्टी की आत्माएं अपनी नई दुनिया की तैयारी के लिए गई हैं, और उनका बड़ा गुप्त पार्ट है, बाबा न बताएगा न हमको पता चलेगा, लेकिन जब कोई ऐसी प्रत्यक्षता की सीन सामने आएगी तो लगेगा सचमुच ये कार्य उन्हीं आत्माओं का है, कोई साधारण आत्माएं नहीं कर सकती। ओम शांति।